ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्ध हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। पिछले कई गीतामृतों के कार्यक्रम में हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ले रहे हैं और आज इस श्लोक का अंतिम भाग है, पार्ट फोर, क्योंकि भगवान ने भी ये श्लोक सीक्वेंस में कहा है। हालांकि अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे कि वो एक ही बार समझ गए, हम इतने नहीं बुद्धिमान, इसलिए हमें चार सिटिंग में इन्हें लेना पड़ रहा है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार से है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इसका विश्लेषण हमने इस प्रकार से किया था। भगवान ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अपनी काम वासना पूरी नहीं कर सकता या नहीं कर पाता तो उसके पश्चात क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण सम्मोह, स्मृति का नाश उस सम्मोह के कारण, तत्पश्चात बुद्धि नाश और फिर जो जीवात्मा है प्रणश्यति, इस भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि भवकूप में वो पुनः गिर जाता है, अर्थात वो किसी कारण के वजह से गिरा था पहले, फिर उभर के बाहर आया और अब पुनः गिर गया। तो हमने चर्चा अब तक की कि कैसे क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से कैसे स्मृति का नाश होता है। मेरे ख्याल से यहां तक हमने चर्चा की थी, तो एक थोड़ा सा रिकैप हम ले लेंगे कि स्मृति की क्या विशेषता है हम मनुष्यों के जीवन में। ये हमने स्लाइड पहले भी दिखाई थी जिसके अंदर एक बालक जब किसी नई वस्तु के संपर्क में आता है, मान लीजिए यहां यहां पर दिखाया गया अग्नि, तो अग्नि के संपर्क में जब कोई बालक आता है तो कई बार सुनने से उसकी स्मृति में बात आ जाती है कि अग्नि जलाती है। नहीं तो कई बार उसे छूना होता है, अनुभव। तो अनुभव श्रवण से भी हो सकता है और अनुभव व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो केवल श्रवण कर कर किसी वस्तु का, किसी स्थिति का अनुभव ले लेते हैं, फर्स्ट क्लास, जस्ट बाय हियरिंग। और फिर दूसरे हैं, उनको देखना पड़ता है दूसरों के अनुभव को। और तीसरी श्रेणी है कि उसे खुद अनुभव करना पड़ता है। और चौथी श्रेणी भी है कि सुना, दूसरों के जीवन में देखा, खुद भी अनुभव किया, फिर भी नहीं सुधरा। प्रभुपाद के फोर्थ क्लास है। तो यहां पर जो मेमोरी है, हमारी स्मृति, वो काम आती है। तो इसकी भी चर्चा हमने की थी कि जो हमारी स्मृति है उसका रोल क्या है। रोज जो हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, खाना, बोलना, चलना, इन सब ये सब कुछ हो पाता है क्योंकि हमारे अंदर एक मेमोरी कार्ड है और वो मेमोरी कार्ड हमें ये सब स्वाभाविक रूप से याद दिलाता रहता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम उस को एनालाइज नहीं कर सकते कि हम कौन से समय, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें कौन सी स्मृति क्या याद दिला रहा है। यहां तक कि जब स्वप्न अवस्था में हम विभिन्न प्रकार के जो भी चलचित्र देखते हैं स्वप्न अवस्था में, और उनका जो भी कॉम्बिनेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी जन्म में हमारी स्मृति में उसका प्रोग्रामिंग हुआ है, तब जाकर वो हमारे सामने, वो स्वप्न में भी प्रस्तुत होता है। जागृत अवस्था में तो छोड़ दीजिए, स्वप्न अवस्था में भी जो हम देखते हैं वो भी हमारी पूर्व स्मृति के वजह से ही हमें दिख पाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहां पर श्रीमद् भागवत में उदाहरण है गजेंद्र का। हाल ही में हम गुरुवायूर गए केरला, और केरला बहुत प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, बहुत बड़े बड़े हाथी, और मंदिरों में, कई सारे मंदिरों में वो हाथी का प्रोसेशन निकलता है, भगवान की उत्सव मूर्ति को हाथी अपने ऊपर लेकर। तो हाथी की एक बहुत विशेषता है, हालांकि उसका जो शरीर है, बताया गया है कि शरीर हाथी का वो बहुत तमोगुण में होता है, बहुत मोटा और थोड़ा आलस से ज्यादा होता है, बहुत अधिक खाता है हाथी। तो हाथी का शरीर तमोगुण में होता है, लेकिन कोई बता सकता है हाथी में एक बहुत बड़ी विशेषता है, मेमोरी, स्मरण शक्ति। हाथी की स्मरण शक्ति ऐसी है कि यदि बचपन में किसी ने हाथी की कोई मदद की हो या उसका विपरीत कुछ किया, तो हालांकि वो हाथी भी छोटा हो, वे व्यक्ति भी छोटा हो, और वो मनुष्य भूल जाएगा बड़ा होने के बाद, तो अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन हाथी बड़े होने के बावजूद वो नहीं भूलता, उस व्यक्ति को भी नहीं भूलता, हालांकि वो व्यक्ति बड़ा हो चुका होगा और जो भी उसने किया हो उसके साथ, वो भी हाथी नहीं भूलता। तो यहां पर क्यों, जब शाप मिला इंद्रदुम्न महाराज को एक पशु बनने का, तो अगस्त ऋषि, उन्होंने शाप दिया, हालांकि अगस्त ऋषि, ये कथा ऐसी है संक्षिप्त रूप में कि इंद्रदुम्न महाराज ये बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वो ध्यान में थे, भगवान के ध्यान में थे, समाधि में कह लो, और अगस्त ऋषि गुजर रहे थे तो अगस्त ऋषि ने देखा कि ये मुझे दुर्लक्ष कर रहे हैं। हालांकि अगस्त ऋषि जानते थे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन एक बाहरी उनके मर्यादा व्यतिकरण के वजह से अगस्त ऋषि ने उन्हें शाप दिया, लेकिन ऐसा शाप दिया कि पशुओं में भी हाथी बना है, कि तुम एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ, तो तुम एक जानवर, अब जानवर में कितने सारे जानवर, कोई भी जानवर का शाप दे सकते थे कि तुम मगरमच्छ बन जाओ, जो भी हिरण बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, नहीं, लेकिन हाथी का शाप दिया और सोचते हुए कि सबक मिलेगा, लेकिन उसके साथ इनकी जो भगवान के प्रति भक्ति है कहां पर छिपी हुई होगी, मेमोरी कार्ड में, और हाथी का जो मेमोरी कार्ड है वो काफी एक्टिव रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, बाकी पशुओं का मेमोरी कार्ड डीएक्टिवेटेड रहता है, हैं, मेमोरी कार्ड रहता है लेकिन वो मनुष्य योनि में आने के बाद थोड़ा एक्टिवेट होता है। तो इसलिए अगस्त ऋषि ने उन्हें ये गजेंद्र बना दिया और हाथियों में भी सर्वश्रेष्ठ हाथी। अब देखिए हाथी की बात चली है, ये गुरुवायूर मंदिर में कितने आप में से गए हैं वहां गुरुवायूर मंदिर, तो आपने वहां एलिफेंट प्रोसेशन देखा होगा, वो एलिफेंट प्रोसेशन निकालते हैं हर रात 9 बजे। तो हुआ ऐसा कि हमारे सारे विद्यार्थीगण, हम लोग सब कीर्तन कर रहे थे, दर्शन हमारा हो चुका था शाम का और हम वो एलिफेंट प्रोसेशन का वेट कर रहे थे, तो कोने में हम कीर्तन कर रहे थे तो एक एक कर हाथी आए, वो सजने लगे, तो जब हमारा कीर्तन चल रहा सबसे लास्ट का हाथी मैंने अपनी आंखों से देखा, बाकी सारे हाथी उनके सामने सब कुछ खाना पीने का रखा हुआ था, वो बड़े बड़े केले के वो ट्रंक्स, और बाकी हाथी लगे हुए थे जब वो सज रहे थे वो खाते हुए बीच में, लेकिन ये जो लास्ट का जो सबसे हमारे कीर्तन के निकट था, ये आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे हम लोग डांस करते हैं कीर्तन में वैसे डांस कर रहा था ये। और मैं पहले कीर्तन में था शामिल, फिर जैसे ही मेरी नजर ये डांसिंग एलिफेंट के ऊपर पड़ी तो मैं जाके ध्यान से देखने लगा कि ये वास्तविक रूप में कीर्तन में कर रहा है कि अचानक हो सकता है कि ऐसे ही हिल रहा होगा, पशु है कुछ समझ में नहीं आया क्यों हिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो इस्कॉन में स्वामी स्टेप है, हम लोग करते ना ऐसे एक पैर ऐसे एक पैर, एक एक पैर उसका बड़ा बड़ा पैर ऐसे कर रहा है फिर ऐसे कर रहा है और उसकी सूंड ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिला रहा है, और वो मैं ध्यान से देखा जो हमारा कीर्तन का बीट चल रहा था वो बीट के अनुसार, तो हम कह नहीं सकते कि कौन से, अब हाथी जैसा पशु, जैसे हम यहां पर भी गजेंद्र का उदाहरण लिए हैं कि इनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, हो सकता है किसी पिछले जन्म में, पता नहीं कौन से पिछले जन्म में भगवान के कीर्तन से कोई संपर्क हुआ होगा इसे एक हाथी का, और बाकी नहीं कर रहे थे, बाकी लगे हुए थे खाने में और इसके सामने भी सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन ये वो कीर्तन में डांस करते हुए लगा हुआ। तो गजेंद्र का उदाहरण है कि गजेंद्र उस विकट परिस्थिति में, कोई ये पूछ सकता है कि हाँ ठीक है आप बोलते हो कि पशुओं में ये हाथी की जो स्मरण शक्ति है बहुत तेज होती है। तो गजेंद्र पहले क्यों इंद्रियो भोग में लगा हुआ था, पहले क्यों नहीं उसने ये सब प्रार्थनाएं की, क्या पहले उसे याद नहीं आया ये सब कुछ? तो आचार्यगण कहते हैं चक्रवर्ती पाद वो गजेंद्र मोक्ष की कथा की टीका में कहते हैं कि जब गजेंद्र उस विकट परिस्थिति में आया तो उस विकट परिस्थिति ने गजेंद्र की स्मरण शक्ति को जागृत किया। जैसे कि अभी भी ये जो गुरुवायूर में मैंने देखा कि जब कीर्तन प्रारंभ हुआ तो क्योंकि वो पशु की योनि में है तो कीर्तन ने उसकी स्मरण शक्ति को एक्टिवेट किया। तो वैसे ही हम यदि हमारी भी स्मरण शक्ति को देखें तो हमारी भी स्मरण शक्ति किसी वस्तु स्थिति या फिर स्थान ऐसे जगहों में हमारी स्मरण शक्ति एक्टिवेट होती है। जैसे हम में से बहुतों का ये अनुभव रहा होगा कि जब हम इस्कॉन के मंदिर में आए पहली बार दूसरी बार कभी भी आए तो कितनी सारी चीजें हमने देखी होंगी, कीर्तन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, दर्शन हो रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है, बहुत से इस्कॉन के मंदिरों में कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हम में से बहुतों का यह अनुभव रहा होगा कि कोई एक प्रक्रिया या कोई एक वस्तु हमारी पूर्व कृष्ण भक्ति को जागृत किसी न किसी प्रकार से की थी, तभी आज हम बैठे हैं। हम वो पिन पॉइंट कर कर नहीं बता सकते अभी कि हाँ ये, जैसे एक भक्त मुझे मुंबई में हाल ही में बता रहे थे कि जब वो पहली बार राधा गोपीनाथ मंदिर में आए, अब देखिए उनको क्या अट्रैक्ट किया, शयन दर्शन में आए, और शयन दर्शन में आरती नहीं होती, शयन दर्शन में खाली अगरबत्ती जलाकर हम छोड़ देते हैं। तो वो जो अगरबत्ती की सुगंध, अब वो दूर बैठे हुए थे लेकिन वो जो अगरबत्ती की सुगंध उन्होंने सूंघी तो वो अगरबत्ती की उस गंध से उनकी सुप्त कृष्ण भक्ति थोड़ी बहुत जागृत होना शुरू हुई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि आज तक मैं किसी मंदिर में कभी आंसू नहीं बहाया हूं, लेकिन ये आंसू कैसे निकल रहे हैं? तो ये आंसू और वो अगरबत्ती की गंध के बीच में क्या था? स्मरण शक्ति, वो एक्टिवेट हुआ। तो गजेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब गजेंद्र उस विकट परिस्थिति में, यहां पर हम देख रहे हैं ये मगरमच्छ ने पकड़ लिया है गजेंद्र को, और उस विकट परिस्थिति में गजेंद्र ने पहले ये आशा रखी कि मैं अपनी शक्ति से या जो मेरे परिवार वाले हैं वो लोग मुझे इसे छुड़ा लेंगे, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई कि नहीं, कोई नहीं मुझे अब बचा सकता, तब उस परिस्थिति में वो सारे श्लोक और भगवान की भक्ति जो उन्होंने पूर्व जन्म में की थी वो सब याद आना उन्हें शुरू हुआ। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपने पिछले स्मरण शक्ति के बलबूते पर अभी भक्ति में प्रगति करूंगा, या ठीक है अभी जो प्रवचन में मैंने सुना कि गजेंद्र ने कैसे अपने पूर्व कृष्ण भक्ति के बलबूते पर मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष उसका हुआ। हमें यह समझना चाहिए कि यदि अभी जो हम भक्ति में हैं हमारे पूर्व कृष्ण भक्ति के स्मरण शक्ति के वजह से थोड़ी बहुत हम भक्ति कर पा रहे हैं तो कितना हमें और स्टोर करना होगा उस मेमोरी कार्ड में अभी, ताकि आगे चलकर हमारी कोई भी स्थिति हो, अगले जन्म में पता नहीं हम क्या कैसे कहां जन्मे, लेकिन जितना अभी हम स्टोर करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन के कार्यक्रम बनाए, जैसे कल हमने इतना सुंदर पुष्प अभिषेक दर्शन किया, तो अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है इसमें। हर साल तो आप पता है, बहुत बार पहले भी हमने देखा है, पंखुड़ियां डालते हैं, ऊपर से नीचे आती हैं, बस उसे निकालते हैं, हो गए ना, वही वही तो कीर्तन करते हैं, वही भगवान खड़े हैं। और जितने भक्त वो पंखुड़ियां निकाल रहे थे, उनको पता है कि ये पंखुड़ी मैंने जो निकाली हुई ऊपर जाके, बस कितना सेकंड लगेगा ऊपर से नीचे आने के लिए, कुछ सेकंड, उसके बाद वो पंखुड़ी निकल जाएगी। तो इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी भक्ति की प्रक्रिया हुई है कि एक पुष्प अभिषेक से मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा कृष्ण भक्ति का संचार होगा। ये इस प्रकार से होता है कि जितना वो जो एक डेढ़ घंटा भगवान का दर्शन हमने लिया अभिषेक होते समय, या कोई अगर 5 मिनट भी लिया हो, 10 मिनट भी लिया हो, तो भगवान श्री कृष्ण, पुराणों में भगवान ने आश्वासन दिया है कि कोई यदि अनजाने में भी इस प्रकार से मेरा दर्शन कर लेता है, अनजाने में, तो वो जो स्मरण उस मेरा है वो परमानेंटली एटर्नली रहता है उसके मेमोरी कार्ड में। बाकी सब इंद्रिय भोग हो सकता है उसका इरेज हो जाए जो जो उसने किया, लेकिन ये परमानेंटली उसके मेमोरी कार्ड में रहेगा। तो अभी कल का पुष्प अभिषेक हमको तुरंत आज चतुर्भुज नहीं बना देगा कि वैकुंठवासी जैसे चतुर्भुज नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, कोई जीव January 3, 2012 का पुष्पाभिषेक देखा, हो सकता है 50 जन्म आगे, 50 जन्म आगे कितनी सारी योनियों को क्रॉस कर किसी एक योनि में कोई परिस्थिति उसकी ऐसी आई, तो उसने जो 50-100 जन्मों पहले 5 मिनट जो राधा मदन गोपाल जी का पुष्पाभिषेक का दर्शन देखा होगा, वो एज इट इज मेंटेन्ड होगा वो मेमोरी। और भगवान किसी सूत्र को भेजेंगे, किसी माध्यम को भेजेंगे उसको फिर एक्टिवेट करने के लिए। तो इसे साधारण मत समझो, ये जो भी हम कृष्ण भक्ति में, चाहे भगवान का 2 मिनट का दर्शन हो, चाहे किसी तीर्थ स्थान में थोड़ा सा तीर्थ हो, या कोई थोड़ा सा महाप्रसाद हो, या एक बार भगवान का नाम उच्चारण हो, या श्रवण हो, जो कुछ हो, ये हमें समझना चाहिए कि ये एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है हमारे स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में। क्या है? परमानेंट इन्वेस्टमेंट। और ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि वहां से उसकी वृद्धि होती रहती है। तो हर एक अंग भक्ति का इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। और इसके विपरीत भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो भी इतनी शक्तिशाली है। तो इसके विपरीत भी ये बताया, ये जो 2 श्लोक हम लिए हैं ये इसके विपरीत की स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसाम, कि वही हम इंद्रिय भोग के मेमोरी कार्ड में जो जो डालते रहेंगे उसके इंप्रेशंस हमें कितने जन्मों तक सताएंगे। अभी हमारे अंदर हो सकता है कि स्वाभाविक इंद्रिय भोग की इच्छाएं कितनी होंगी, कोई हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती इंद्रिय भोग, ये प्रकार का इंद्रिय भोग, उस प्रकार का इंद्रिय भोग को कैसे करना है, कैसे ये सारे इंप्रेशंस हैं, पिछले जन्मों में जो इतना इंद्रिय भोग किया है उसके सारे जो इंप्रेशंस हैं वो स्वाभाविक रूप से अब हमें आकर वो बाधा डालते हैं। तो इसलिए क्यों आप देखो कि भक्तगण जितना ज्यादा हो सके, टाइम कम है और मेमोरी कार्ड में बहुत कुछ भरना है ना, टाइम कम है, मेमोरी कार्ड का स्पेस बहुत है, और उतना ही नहीं कलयुग में वो स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अननेसेसरी इंप्रेशन से। तो वो जो अननेसेसरी इंप्रेशन ऑलरेडी हमारे मेमोरी कार्ड को ऑक्यूपाई किया है, उसको इरेज करना है इसके बलबूते पे। तो इसलिए एक भी मौका यदि हमें मिले जहां पर हम हमारा प्रीवियस इंद्रिय भोग का इंप्रेशन भगवान श्री कृष्ण भक्ति के इंप्रेशन से रिप्लेस कर पाए, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए मौका। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ठीक है अगले पुष्पाभिषेक में कर लेंगे, तो हर साल होने वाला है, कितनों के घर में तो होता रहता है यहाँ वहाँ पूरे साल भर, या फिर अगले जन्माष्टमी या अगले शरद पूर्णिमा गोवर्धन पूजा या अगला संडे फीस्ट या अगला वेडनेसडे कार्यक्रम, अगला दर्शन, रोज तो इनका शयन दर्शन होता है, रोज तो ये सब कुछ होता है। नहीं, जितना ज्यादा हम उसको अर्जित करेंगे, हाँ रोज तो होते हैं सब, हम होंगे कि नहीं, भगवान तो होंगे जरूर, उनके सब फेस्टिवल्स तो चलते रहेंगे, हम होंगे कि नहीं ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और हम यदि नहीं होंगे तो हमको ये नहीं पता कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे। इसलिए जितना हो सके, वो बोलते ना, जितना हो सके लूट लो, ये बांटने के लिए खड़े हैं, आए हैं हम, जितना हो सके लूट लें। तो गजेंद्र इस स्थिति में उनकी प्रार्थनाएं यदि आप पढ़ोगे तो उनकी प्रार्थनाओं की फलस्तुति में कहा गया है कि यदि कोई गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं उच्चारण भी करता है तो उसका मोक्ष निश्चित है। तो सोचिए इनका मोक्ष क्यों नहीं निश्चित था। और उनकी प्रार्थनाओं में वो यही कहते हैं कि मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मैंने एक जन्म में किसी न किसी प्रकार से आपकी भक्ति की, जिसके वजह से आज मैं ये मगरमच्छ क्या, इस भौतिक संसार का जो भव बंधन है उस मगरमच्छ के जबड़ों से मैं बच रहा हूं। ये उनका साक्षात्कार था। तो हमने मन का विश्लेषण किया था कि ये जो स्मरण शक्ति हमारे अंदर है, ये हम अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में भरते हैं। कॉन्शियसली हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो कुछ हम हमारी इंद्रियों से, हमारी जो हमारा जो मन है, सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, उससे जो हम अंदर मेमोरी में स्टोर करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो अब बुद्धि, जो भगवान कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस, कि मन के ऊपर है बुद्धि, तो अब इंटेलिजेंस यहां पर दो प्रकार की बताई गई है, करप्टेड और लॉस्ट। हम आध्यात्मिक बुद्धि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अंत में उसकी चर्चा करेंगे। तो करप्टेड इंटेलिजेंस वो अक्सर मनुष्यों में पाई जाती है, बुद्धि है लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उस बुद्धि को बोलते हैं दुर्बुद्धि। तो बुद्धि शब्द है उसके अंदर, उसके लेकिन सामने प्रफिक्स क्या लगा है, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि। तो होता क्या है कि हमें प्रकृति ने, हम मनुष्यों को प्रकृति ने बुद्धि दी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, लेकिन जब मनुष्य उसी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न करके केवल इंद्रिय भोग में उस बुद्धि को लगाता है, वो तो वो उसकी जो सुबुद्धि वो कुबुद्धि में परिणित हो जाती है। और जब उसकी बुद्धि इस प्रकार से वो करप्ट कर लेता है, तब फिर प्रकृति कहती है कि ठीक है, तुमको बुद्धि दी थी लेकिन तुमने उस सुबुद्धि को कुबुद्धि बना दिया, तो फिर पशु की योनि, और पशु की योनि में फिर वो जो बुद्धि है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की बुद्धि, गेट्स लॉस्ट, वो चली जाती है। फिर कौन सी बुद्धि आती है? एक ही बुद्धि आती है, आहार निद्रा भय। जानवरों में बुद्धि है, ये नहीं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि कहां तक सीमित है? बहुत बुद्धि लगाते हैं वो लोग, ये जो आजकल टीवी में आते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह, इसमें आप देखो ये जो जानवरों का जीवन बताते हैं, कैसे बुद्धि से ये लोग क्या क्या करते हैं। कई ऐसे पक्षी हैं जो 6000 माइल हर वर्ष उड़ते हैं, और उन्हें कोई सैटेलाइट मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिका से आर्कटिक सर्कल, मतलब एक छोर से दूसरी छोर। ये ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो इतनी लंबी यात्रा करते हैं ये लोग, और कोई इनको बताता नहीं कि कहां से कौन सा टर्न लेना है, इतनी लंबी यात्रा अपनी बुद्धि से। लेकिन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उधर खाने के लिए मिल रहा है। तो अब वहां पर आप देखोगे कि ये लोग बहुत अच्छा अच्छा फिल्मिंग करके बताते हैं कि भी यहां से निकले, अच्छे से बताएंगे कि ये वाले पक्षी ऐसे उड़ के जा रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? जिसने अब बुद्धि लगा के वो कैमरा बनाया, उसकी शूटिंग कर रहा है, वो उसका मर्म नहीं पहचान रहा कि ये पहुंचने के बाद करता क्या है वो पक्षी। उधर पहुंचने के बाद उसका वही चालू है, आहार निद्रा भय मैथुन, उधर हो गया, फिर वहां से उड़ के वापस से एंटार्क्टिका, वहां पर भी वही चालू है। तो उनकी जो भी बुद्धि है वो है, लेकिन वो उसी के लिए बनाई गई है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपनी उस बुद्धि को कुबुद्धि बना लेता है, देन ही लूजेस द एबिलिटी टू वर्शिप कृष्णा। अनलेस कोई बहुत बड़ी कृपा हो गई हो, जैसे गजेंद्र के ऊपर, और वो भी अगस्त ऋषि उनकी उनके ऊपर। तो स्मृति भ्रमशात, जो अब अंतिम शिक्षा आज के श्लोक की, कि जब स्मृति का नाश हो जाता है तब बुद्धि का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में हमारी जो बुद्धि है उसकी तुलना तलवार से की गई है। अब देखिए, तलवार एक शस्त्र है, और उसी धातु से यह शब्द बना है शास्त्र। तो एक है शस्त्र और एक है शास्त्र। तो मनुष्य जीवन में जब तक हम शास्त्र के आधार पर हमारे शस्त्र को नहीं धार लगाएंगे, तब तक तलवार तो है, लेकिन तलवार वो किस काम की जिसे कोई धार ही ना हो। अभी हम लोग यहां पर बैठे, तलवार तो इस्तेमाल नहीं किए होंगे इतना, नहीं? ठीक है, चाकू लेते हैं, चाकू बहुत इस्तेमाल किए ना, जो भी गृहणियां किचन में चाकू इस्तेमाल करते। तो आप देखिए, कई ऐसे चाकू होते हैं दिखने में एकदम चमकदार, बड़े बड़े, आजकल अलग अलग प्रकार के साइज के चाकू आते हैं, और वो चाकू में यदि दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन कोई धार नहीं, तब देखिए, चाकू दिखने में अच्छा है लेकिन धार नहीं है, तो जो खाना पकाते हैं उनको समझ में आता है कि किसी काम का नहीं, खाली दिखने में अच्छा है लेकिन कोई काम का नहीं। क्या वो नाम बड़े दर्शन खोटे, उस प्रकार से ऐसे ही बोलते हैं, तो किसी काम का नहीं। वैसे ही तो ये जो उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि आप देखो जो मनुष्य समाज आजकल का है वो ऐसी चमकदार तलवार है, दिखने में तलवार एकदम, उसकी मयान जैसे यहां पर देखो उसकी मयान भी बताई गई है, मयान में डालते हैं ना तलवार, तो जो उसकी मयान है वो भी एकदम मखमली और उसके ऊपर सुनहरा सब कुछ लगाया हुआ है, तो मयान भी एकदम ऐश्वर्यशाली है, तलवार भी चमकदार है, लेकिन जब तलवार को इस्तेमाल करने जाते हैं तो पता लगता है कि धार ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये जो बुद्धि रूपी शस्त्र है हमारा, इसको यदि धार लगाना है आपको तो शास्त्र से, शास्त्र वो धार लगाने वाली मशीन है, होते ना वो चाकू धार लगाने वाले आते ना वो लोग, तब देखिए वो जो जब धार लगाते हैं जिससे जिस भी तरीके से लगाते हैं तो वो इतना आकर्षक नहीं दिखता है, लेकिन वो धार लगने के बाद चाकू लोग फिर उसको बहुत हैंडल करते हैं सेफली। तो वैसे ही हमारी बुद्धि जब उस प्रकार के शास्त्र से ये शस्त्र पहनी होगी, ये तलवार हमारी, तब जाकर हम हमारे मनुष्य जीवन को बहुत सेफली हैंडल करेंगे, है कि नहीं। अभी देखिए जब तक कोई शास्त्र नहीं पढ़ता तब तक वो अपना जीवन एकदम आराम से चल रहा है, जी रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हाँ सब फुर्सत में चला, कोई मतलब नहीं कुछ। जैसे ही शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिए, इससे ये होता है, उसे ये होता है, श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद पढ़ लिया अभी, जहां पर सब नरकों का वर्णन है, ये करने से वो हो जाता है, वो करने से ये हो जाता है, तो फिर वो जैसे ही उसके चाकू को धार लग गई, अनजाने में भी लग गई, जैसे उसके चाकू को धार लगी तो अब वो बहुत ध्यान से उसे इस्तेमाल करता है कि नहीं। पहले जिस पेस में और जिस डायरेक्शन में हम अपना जीवन जी रहे थे, अब इस्कॉन में आने के बाद जब हमें समझ में आता है शास्त्र के आधार पर कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है और ऑलरेडी इतना खत्म कर चुके हैं हम, और ये आगे के जितने बचे हैं उसको गवा देंगे, उसके बाद पता नहीं कब मिलेगा, 84 लाख क्यों नहीं फिर से भ्रमण करते हुए पता नहीं कब मिलने वाला, तो फिर हम सहम जाते हैं, फिर एक एक कदम जैसे वो माइंस के ऊपर चलता ना कोई, एक एक कदम एकदम सहम सहम के लेता, और ये उदाहरण यदि हम ले तो कई बार हम जब सुबह मॉर्निंग में कटिंग करते हैं वेजिटेबल्स का यहाँ मंदिर में, तो हम देखते हैं कई चाकू में धार कम होता है, तो हम क्या करते हैं जो दूसरा चाकू जिसमें धार ज्यादा है उसको लेते हैं, है ना, फिर उसको घिसते हैं इससे, तो ये क्या है, ये सत्संग, ये सत्संग। तो हाँ शास्त्र हम अकेले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सत्संग क्या है कि सत्संग में जब आते हैं मंदिर में आते हैं यहां पर देखते हैं कितने तेज धार वाले बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ 15-20 दिन से नहीं आए होंगे तो धार निकल गया थोड़ा, फिर जैसे ही मंदिर में आते हैं तो देखते हैं बगल में कोई बैठा है, कई ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं जो एकदम तेज धार वाले, तो उनके बगल में बैठने से ही धार लगना शुरू हो जाता है हमारा, और फिर ये नहीं कि जब आप की तलवार को धार लग गया तो फिर बगल में जो आपके बैठा उसके अगर धार नहीं तो उसको धार दो, कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है, धार लो धार दो, तो सत्संग का अर्थ यही है। तो यदि आपको कोई भार बोले पूछे कि आप ये बुधवार के कार्यक्रम में जाके करते क्या हो, धार लगाते हैं सब बैठे। ये हमारा सीक्रेट सूत्र है, यहां पे आके हम धार लगाते हैं। उनको समझ में नहीं आएगा क्या मतलब हुआ इसका। तो ये जो शास्त्र, इसलिए जब श्रीमद् भागवत में और भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान से, इस ज्ञान रूपी तलवार से, एक किताब भी श्रील प्रभुपाद ने लिखी, सोर्ड ऑफ नॉलेज, सोर्ड ऑफ नॉलेज, कि ये तलवार, ज्ञान रूपी तलवार, कहां से ये ज्ञान? शास्त्र से। तो ये शास्त्र से ये हम हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते हैं। और इसके साथ साथ उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है, भगवान कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करते हैं? ये तो हमको जो शस्त्र दिया है, कौन सा? बुद्धि रूपी शस्त्र। भगवान सुदर्शन चक्र इस्तेमाल करते हैं। अब अम्बरीश महाराज की जो कथा, ये जो चित्र यहां पर आप देख रहे हैं, ये अम्बरीश महाराज की कथा से है। जब दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए वो असुर उत्पन्न करते हैं, तो भगवान अपना सुदर्शन भेजते हैं। तो यहां पर ये भगवान का सुदर्शन उस अस्त्र को खत्म करता है और दुर्वास मुनि के पीछे वो सुदर्शन। लेकिन बहुत सुंदर इस प्रसंग में हमारे आचार्य ने व्याख्याएं की हैं कि जब सुदर्शन प्रकट हुआ, अब अम्बरीश महाराज की स्थिति में, अम्बरीश महाराज को, अम्बरीश महाराज की भक्ति से इतने प्रसन्न भगवान थे कि भगवान ने अपना सुदर्शन गिफ्ट में दे दिया था। सोचिए, भगवान का पर्सनल वेपन उन्होंने अम्बरीश महाराज को गिफ्ट के रूप में दे दिया था, रखो। अम्बरीश महाराज बोले, मुझे इसकी क्या जरूरत है? अब देखिए, एक है अम्बरीश महाराज जिनको भगवान ने सुदर्शन दिया प्रसन्न होकर, मेरी तरफ से ये भेंट। और महाभारत में वर्णन आता है दुर्योधन का, नहीं, अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा का वर्णन आता है। अश्वत्थामा, वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आपका सुदर्शन चाहिए कुछ समय के लिए भाड़े पे। तो भगवान भी थोड़ा आश्चर्य किए कि लोगों ने पता नहीं क्या कि इसने तो सुदर्शन मांग लिया। हालांकि भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान जैसे सुदर्शन अपनी उंगली पर धारण करते हैं, तो भगवान ने प्रकट किया और अश्वत्थामा लो। अश्वत्थामा ने जब प्रयास किया भगवान के सुदर्शन को अपनी उंगली पर लेने का, तो अश्वत्थामा वो सहन नहीं कर पाया उस सुदर्शन की गर्मी को, वहीं धराशायी होकर गिर गया। और फिर कुछ समय बाद जब होश में आया, तो भगवान पूछते हैं, अश्वत्थामा, मैं जानता था कि तुम नहीं झेल पाओगे इस सुदर्शन को, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों चाहते थे इस सुदर्शन? अब देखिए, अश्वत्थामा भगवान के सामने क्या छुपाएगा, तो कहता है कि मैं आपको मारना चाहता था। देखिए उसकी मूर्खता, एक तो भगवान से सुदर्शन मांग रहा है, एक तो उसको झेल नहीं पा रहा है, उठा नहीं पा रहा है, और वो भी उसके, उसका प्रोग्राम देखिए, उसकी योजना देखिए, भगवान को मारेगा उससे। और यहां पर अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज से भगवान इतना प्रसन्न हुए कि अम्बरीश महाराज को भेंट के रूप में भगवान ने सुदर्शन दे दिया। और भगवान ने कहा कि रखो इसको, तुम एक राजा हो, कभी भी ये इस प्रकार का शस्त्र काम आएगा तुम। तो भगवान का दिया हुआ, केवल इसलिए, ये नहीं कि सुदर्शन दिया है इसलिए, भगवान का दिया हुआ महाप्रसाद, तो इसलिए अम्बरीश महाराज ने रख लिया। और जब दुर्वास मुनि ने अपने केश से वो राक्षस उत्पन्न किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, तब भी अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन को नहीं बुलाया। ये नहीं कि अरे मेरे पास तो सुदर्शन है तो मुझे डरने की क्या बात है, निकालो जितने राक्षसों को तुमको निकालना है। देखिए अम्बरीश महाराज कितने कल्चर्ड, कितने सभ्य राजा, कि जब दुर्वास मुनि मारने पर उतारू हो गए और जिसमें अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी, एब्सोल्युटली नो फॉल्ट ऑफ अम्बरीश महाराज, उस समय भी अम्बरीश महाराज वो सुदर्शन को आह्वान नहीं दिए, जो कि भगवान ने इसलिए दिया गया, इस दिन के लिए दिया था कि जब ऐसी स्थिति आएगी, ऐसे दुर्वास कुछ करेगा, उठ चलाना इसके ऊपर। फिर भी अम्बरीश महाराज ने उसे इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अम्बरीश महाराज सोच रहे थे कि मैंने गलती की है, मुझे दंड मिलना चाहिए, जबकि कोई गलती नहीं थी उनकी। तो अम्बरीश महाराज की ऐसी नम्रता को देखकर अपने आप सुदर्शन एक्टिवेट हो गए और उसको राक्षस को पहले मारा और फिर दुर्वास मुनि के पीछे। तो हमारे आचार्य इस टीका में कहते हैं कि वो जो सुदर्शन ने सब हम सब को और पूरे विश्व को, भगवान की पूरी सृष्टि को क्या दर्शन दिया, इसलिए तो उसका नाम है क्या है? सुदर्शन। क्या दर्शन दिलाया उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये दर्शन दिलाया, ये केवल सुदर्शन ही दर्शन दिला सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए कैसे प्रज्वलित, ऐसे बहुत सारे अनगिनत सूर्य हो, ऐसी रोशनी इनकी। ये दर्शन दिलाया कि दुर्वास मुनि बहुत बड़े विरक्त थे, बहुत बड़े तपस्वी, और अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ, लेकिन सुदर्शन ने सबको ये दर्शन दिया कि असली वैरागी कौन है। केवल जो ये वस्त्र धारण कर लिया है, केवल जो, और दुर्वास मतलब उन्होंने तो कोई वास, कोई वस्त्र भी नहीं धारण किया, इसलिए उनका नाम वो था। तो ऐसे बड़े महंत विरक्त, और ये अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ, धन दौलत और जो भी राज का जो कार्यभार होता है उसको संभालते हुए, पॉलिटिक्स, वेल्थ, विमेन, इनके में घिरे हुए, लेकिन सुदर्शन ने सबको दर्शन ये दिया कि ये हैं असली भक्त। इसलिए भक्ति केवल वस्त्र बदलने से नहीं हो जाती, या आपका आश्रम बदलने से आपकी भक्ति नहीं हो जाती। ये वो बता रहे थे, हु इज मोर रिनाउंस्ड, दुर्वास और अम्बरीश, कि इनके पास तो कुछ भी नहीं था, हालांकि इतने बड़े वैरागी, लेकिन सुदर्शन भगवान ने कहां रखा था पर्सनली, अम्बरीश महाराज की सुरक्षा। So this is the real nature or purpose of Lord's Sudarshan, to show who is the real genuine devotee of Krishna. तो हम ये क्यों लिए हैं, क्योंकि यही सुदर्शन एक ऐसा शस्त्र भगवान का है जो कि हमारी बुद्धि मैं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन डाल सकता है, विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, कि हम पता लगा सकें कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे सहायक है, और यदि वो हम नहीं करें तो कैसे हमारा जीवन व्यर्थ है। जस्ट लाइक हाउ सुदर्शन एक्सपोज्ड दुर्वास मुनि एंड रिवील द ग्लोरीज ऑफ अम्बरीश महाराज, सिमिलरली दिस सुदर्शन, when we take shelter of with using our intelligence, can also expose our anarthas and reveal the Krishna bhakti which is within. ये सुदर्शन का purpose है। तो फिर यदि हम भगवान द्वारा आज जो बुद्धि के विषय में उन्होंने कहा है, तो दो क्रियाएं बुद्धि की, discriminates and gives choices. ये बहुत सरल है समझना। बुद्धि क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करके बताती है, ये राइट ये रॉन्ग, ये राइट ये रॉन्ग, चॉइसेस हमारे सामने रखती है ना। मंदिर जाना अच्छा है सिनेमा जाना, ये जो भी कुछ सामने चॉइसेस। तो हमारे सामने जब बुद्धि ऐसे चॉइसेस रखती हैं, वो चॉइसेस इसलिए रखती हैं बुद्धि ताकि हम कितने प्रामाणिक हैं ये भगवान देख सके। अभी जानवरों में प्रामाणिकता नहीं देखी जाती क्योंकि उनके अंदर वो बुद्धि नहीं दी गई, विवेक बुद्धि, बुद्धि है लेकिन विवेक बुद्धि नहीं दी गई। इसलिए क्यों हम मनुष्यों में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, कौन सा फीचर? प्रामाणिकता का फीचर। कुछ भी आप लो, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां पर भी क्या देखी जाती है? आपकी प्रामाणिकता देखी जाती है, हाउ जेन्युइन यू आर। किसी रिलेशनशिप में आपकी प्रामाणिकता देखी जाती है। जानवरों में वो सब नहीं देखा जाता क्योंकि जानवर कुछ अप्रामाणिक कर ही नहीं सकते, है ना? आप देखो, एक एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि मैं पिछली बार जब जा रहा था यूके जा रहा था, तो वहां पर एक फैमिली, वो लोग अमेरिका जा रहे थे, तो उनके साथ एक उनका कुत्ता भी वो लेके जा रहे थे फ्लाइट में, छोटा सा कुत्ता, उसको बास्केट वास्केट में सब बांध के कुत्ते को लेके जा रहे थे। तो अब जितना भी वो स्क्रीनिंग वीनिंग हो रहा था वो सब उस आदमी का हो रहा था, कुत्ते का कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा डर उन मनुष्यों के से, कुत्तों से कोई डर नहीं उनका। ये बम बम कौन फोड़ते कौन है? सब मनुष्य तो फोड़ते हैं। तो वो मैं देख रहा था कि ये कुत्ता आराम से घूम रहा है, कोई उसको मेटल डिटेक्टर ये वो कुछ नहीं, आराम से घूम रहा है, कोई उसके ऊपर शक की नजर से नहीं देख रहा है। लेकिन ये जो उसका मालिक है, उसको यहां से जाओ वहां से जाओ, हाथ इधर करो उधर करो, ये डिटेक्टर वो डिटेक्टर सब जगह लगाया हुआ है उसके। कोई ट्रैफिक सिग्नल होता है, कुत्ता क्रॉस कर जाए, ट्रैफिक पुलिस किसके पीछे भागेगा? आदमी के पीछे भागेगा, कुत्ते के पीछे नहीं भागते। तो यहां पर क्योंकि हमको वो हायर विवेक बुद्धि दी गई है, इसलिए हमारे अंदर अपेक्षा की जाती है किसकी? प्रामाणिकता की, लॉयल्टी, फिडेलिटी, कैरेक्टर, ये सारी चीजें जो हैं ये सब मनुष्यों से अपेक्षित होती। और दूसरा फीचर इंटेलिजेंस का क्या है? हम मेमोरी की चर्चा कर रहे थे, तो हमारी बुद्धि हमें रिमाइंड करती है कि पिछली बार तुमने जो गलती की थी गलत चॉइस लेके। सो रिमाइंड्स एंड वॉर्न्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। कि जब अब जैसे एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण है कि जैसे ही मान लीजिए किसी को खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिक का करंट लग जाए, तो क्योंकि उसकी मेमोरी में पहले से है कि लाइव वायर को टच करने से मुझे पिछली बार करंट लगा था। जैसे मुझे याद है बचपन में मेरे साथ एक घटना हुई थी, उसके बाद अभी तक वो मेमोरी इतनी फ्रेश है मेरे अंदर। तो दूसरे दिन हमारा एनुअल फंक्शन था स्कूल का और सब बोला गया था कि कपड़े प्रेस वगैरह करके जाना है, तो वार्निंग दिया हुआ था माता पिता ने कि कपड़े प्रेस किए हुए पहन के जाना है। तो वैसे मैं कभी वो प्रेस नहीं किया करता था, वो करना पड़ा, तो रात को प्रेस करके वो प्रेस वहीं छोड़ दिया और सो गया, नींद आ गई मेरे को। तो अब मुझे ध्यान में आया कि मैंने वो उसका बटन बंद किया कि नहीं प्रेस का, तो देखा बटन तो बंद था लेकिन वो प्लग्ड था। तो मैंने सोचा वो निकाल देते, गलती से किसी ने ऑन कर दिया तो रात भर जलती रहेगी वो प्रेस। तो उसको निकालने के लिए, अब मैं थोड़ी नींद में था, नींद से निकालने की कोशिश किया तो मैंने अपनी सारी उंगलियां ऐसे डाली, वो निकल नहीं रहा था, टाइट था का। इतनी जोर से मुझे करंट लगा, आप देखो समझ रहे हैं, वो पिन में चला गया मेरा हाथ ऐसे, वो निकल नहीं रहा था ऐसे डाल। मेरे को अगले 3 घंटा नींद नहीं आई। और उसके बाद से जब भी थ्री पिन प्लग जो होता है उसको मैं एकदम एंड पे पकड़ता हूं अभी भी। आप कभी मुझे अकेले में भी देख लेंगे ना, तो या तो अगर कोई होगा तो उसको बोलूंगा मैं निकाल, या मैं निकालूंगा तो एकदम उसको एंड में पकड़ूंगा और ऐसे ऐसे करके हिला के ऊपर नीचे, नहीं निकले तो छोड़ो मेन स्विच ऑफ कर दो क्योंकि वो बुद्धि में, वो एक जो घटना हुई बचपन में वो बुद्धि में बहुत ही वो रजिस्टर हो गया, एकदम इंस्क्राइब्ड जिसको बोलते हैं। सो व्हाट इंटेलिजेंस आल्सो डज अलोंग विद डिस्क्रिमिनेशन, इट रिमाइंड्स यू एंड वॉर्न्स यू कि तुमने ये काम किया था, ये भुगते थे, याद रखो। तो बुद्धि बहुत अच्छा काम करती, रिमाइंड्स एंड वॉर्न्स। तो अब इसका पावर हाउस कहां से आता है ये बुद्धि का, ये सब कुछ करने के लिए? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। आप लोग सोच रहे होंगे ये फॉरगेटफुलनेस भगवान के द्वारा क्यों? तो भगवान हमें क्या अपोहनम च, यहां पे जो शब्द है अपोहनम च मतलब फॉरगेटफुलनेस, क्या भुला देते हैं या हमसे भुलवा देते हैं अगर ये कहें तो? देखिए जैसे अभी हम इस मनुष्य योनि में है, तो पिछले योनि में जो भी हम हो हुए हो अगर उसकी स्मृति भगवान याद दिला दे हमको तो हम तो एक दिन भी नहीं जी पाए। अगर आपको एक स्ट्रांग उदाहरण दूं, मान लो कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में सुअर रहा हो और उसको सारी मेमोरी फ्रेश है उसके अंदर, तो सोचिए जब भी वो हलवा खाने बैठेगा तो बहुत कई बार कई लोगों को ये इच्छा होती है, अरे मैं अपना पिछला जन्म याद रखूं तो कितना अच्छा रहेगा। नहीं, ये भगवान की कृपा है अपोहनम च, कि हमको फॉरगेटफुलनेस दिया हुआ है अपने पिछले जन्मों के वो सारे कुकर्तूतों के बारे में, तो ये भगवान की कृपा है ताकि हम, वो बोलते ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, पॉजिटिवली अगर देखें तो वो ये है। तो ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन, चॉइसेस, वार्निंग, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस का पावर हाउस यहां भगवान बता रहे हैं कि मैं जो हृदय में स्थित हूं परमात्मा के रूप में, तो मैं उस जीव को मेरी तरफ आने के लिए जितना फॉरगेटफुलनेस जरूरी है वो देता हूं, जितना रिमेम्बरेंस जरूरी है वो देता हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा एक स्टेप हाई आज जो हम बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं उसके संदर्भ में भगवान ने 10वें अध्याय में श्लोक कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। ये एक स्टेप ऊपर है पिछले श्लोक से, कि जहां पर भगवान कह रहे हैं इसका हमने विश्लेषण किया, एनालाइज किया इसको, कि जो सतत रूप से युक्त रहता है, युक्त का अर्थ है कि वो थ्री पिन प्लग में है, प्लग्ड है, वो कनेक्टेड होना चाहिए ना, तो युक्त है मतलब कनेक्टेड है वो। लेकिन भगवान केवल इतना ही नहीं कहते, कैसा कनेक्टेड होना चाहिए? सतत, हर समय कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपको अगर वो आयन करना है, प्रेस करना है किसी कपड़े को, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको करो फिर निकाल दो तो क्या ठंडा हो जाएगा प्रेस? तो सतत युक्त होना चाहिए वो थ्री पिन उसके अंदर, है ना। और उसके साथ साथ भजताम, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट चलता हुआ रहना चाहिए, उधर से तो करंट आ रहा है, लेकिन अगर यहीं से प्रेस खराब है पूरा, तो चाहे कितना भी करंट उधर से डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भगवान कहते हैं कि सतत युक्त मेरे साथ संपर्क में रह के करना क्या है, ये नहीं कि खाली मंदिर आके बैठ जाना है, वो भी ठीक है, लेकिन भजताम, प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट किए हैं डिवोशनल सर्विस, यू गेट कनेक्टेड टू कृष्णा एंड डू डिवोशनल सर्विस इन दैट कनेक्शन, डोंट जस्ट थिंक दैट मैं आ रहा हूं मंदिर में ना बस ना, वो उससे ज्यादा भी तो भगवान देखेंगे ना, वो मेरी नैया पार कराएंगे। तो भगवान कह रहे हैं युक्त होने के बाद भजताम, तो ठीक है मैं भजताम चालू करता हूं, लेकिन वो भजताम कैसा होना चाहिए, भगवान आगे बोलते हैं प्रीति, वो भावना के साथ। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, चाहे वो धन्ना जट हो चाहे गोदावरी का ब्राह्मण हो, वो भावना प्रीति पूर्वकम, कनेक्शन के बाद डिवोशनल सर्विस, दैट डिवोशनल सर्विस विथ शुड बी विथ लव विथ प्रीति। और फिर भगवान कहते हैं कि जब मेरा भक्त इस प्रकार के भजन में लगता है प्रीति के साथ, तब भगवान कौन सी बुद्धि देते हैं, बुद्धि योगम तम, ददामि का अर्थ है देना, और कौन सी बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा वो योग में स्थित होता है, मेरे एक्चुअल माय कनेक्शन में स्थित होता है, और उससे प्राप्त क्या होता है, कृष्ण प्राप्त, ये न माम उपयान्ति ते, फाइनली ही अचीव्स कृष्णा। अब देखिए ये श्लोक का विश्लेषण और जो आज का श्लोक हमने लिया उसमें क्या था, यहां पर ददामि बुद्धि, सेकंड लास्ट क्या है, ददामि बुद्धि, तो वहां पर क्या था आज के श्लोक में, बुद्धि नाश। तो जब इसका विपरीत कोई करता है, वो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो बुद्धि नाश की वजह से क्या है, कृष्ण प्राप्ति छोड़ दीजिए, भवकूप प्रणश्यति। तो हमें करना क्या है, आज के श्लोक से यह सीखना है कि हम कैसे इस श्लोक को अपने जीवन में उतारें। कौन से श्लोक को, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते, क्योंकि अंततः कृष्ण प्राप्ति यही हम सब मनुष्यों का एकमेव उद्देश्य है। और इसलिए भगवान अब अगले श्लोक में बता रहेंगे, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, कि कैसे राग और द्वेष इन सब से ऊपर उठकर हे अर्जुन तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो भगवान यहां पर भावना अर्जुन की जागृत कर रहे हैं, ये प्रीति को जागृत करते हुए अगले श्लोक में बताएंगे कि कैसे उस प्रीति को जागृत करो और मेरी भावना में तो मेरे प्रसन्नता के लिए ये युद्ध लड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय।